नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विकास के लिए नवाचार पर बल देते हुए इसे प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने कार्यालयों में आम जनता के लिए उपलब्ध रहने के निर्देश दिए। देहरादून में डेंगू और जल जनित रोगों की रोकथाम में आशा कार्यकर्त्रियों की सक्रिय भूमिका का दिख रहा है असर। राजधानी में इस वर्ष डेंगू के मामलों में कमी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जल्द ही स्पोर्ट्स लिगेसी प्लान लागू करेगी। 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियां की जाएंगी स्थापित। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 22वें मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित किया। ये कार्यक्रम 9 से 14 वर्ष सेवा अनुभव वाले आईएएस अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। श्री चौहान ने कहा कि लोक सेवा विशेषाधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से विनम्रता, अनुशासन और सहानुभूति के साथ शासन प्रणाली को सहभागी और प्रभावी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने नीति से जमीन पर बदलाव लाने को वास्तविक नेतृत्व बताया और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को दोहराया। साथ ही कृषि को भारत की ताकत बताते हुए प्रयोगशाला से खेत तक नवाचार पहुंचाने की जरूरत बताई। महिलाओं की भागीदारी को विकास की आधारशिला मानते हुए उन्होंने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना विकास अधूरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल नैनीताल में कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता दरबार और चौपाल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे जनता से संवाद करें ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने कार्यालयों में आम जनता के लिए उपलब्ध रहने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष ध्यान देने को कहा। मानकों का पालन न करने या देरी की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की चेतावनी दी। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी कितना भी बड़ी पहुंच वाला हो, बड़े पद पर हो, यदि अपने कर्तव्यों और दायित्वों के साथ ठीक प्रकार से पारदर्शिता से अगर काम नहीं करेगा, कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, तो किसी भी कीमत पर उस पर कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर कोई उस पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लापरवाही बरतने वाले के साथ कड़ाई से पूरा तंत्र काम करेगा।
राजधानी देहरादून में डेंगू और जल जनित रोगों की रोकथाम में आशा कार्यकर्त्रियों की सक्रिय भूमिका से इस बार डेंगू के मामलों में कमी आई है। आशा कार्यकर्त्रियों को उनके कार्यों के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से 1000, नगर निगम से 1500 और जिला प्रशासन से पहली बार 1500 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इस प्रकार उन्हें कुल 4500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशाओं और आशा फैसिलिटेटर्स को अलग से 1555 रुपए का विशेष प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि आशाएं अब केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं बल्कि हेल्थ सिस्टम की पहचान बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून और ऋषिकेश नगर क्षेत्रों में आशाओं को वार्ड वार, डेंगू सर्वे, लार्वा नियंत्रण और फील्ड वॉलंटियर्स के कार्यों के सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है। आशाओं के संक्रमित होने की स्थिति में उनका प्राथमिकता से उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में लंबित जन शिकायतों को लेकर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने 2023-24 की कई विभागों की शिकायतों की समीक्षा की और पाया कि कई मामले 36 दिनों से भी अधिक समय से लंबित हैं। इस पर नाराज होते हुए उन्होंने सभी विभागों को 3 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि समाधान न होने की स्थिति में कार्रवाई तय होगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल अपने 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने मल्लीताल में 1,101 करोड़ रूपये की लागत से चल रहे मानसखंड मंदिरमाला योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया और 12 दुकानों का लोकार्पण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि धुनीघाट और रातीघाट पैदल मार्ग सुधारे जाएंगे, शहीद संजय बिष्ट मोटर मार्ग और राज्य मार्ग संख्या 71 के खंडों को उन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नैनीताल में सीवर लाइन एसटीपी कार्य प्रगति पर है और बढ़ते पर्यटन को देखते हुए ऑटोमेटिक अशोक और मेट्रो पार्किंग परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में सशक्त रूप से आगे बढ़ रही है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तराखंड अग्रसर है। नैनीताल के डीएसए मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू करेगी, जिसके तहत 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डीएसए मैदान को उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं के साथ एक मॉडल स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नैनीताल में वैकल्पिक पार्किंग विकसित की जाएगी, जबकि फ्लैट्स मैदान में हॉकी टर्फ और बॉक्सिंग रिंग स्थापित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फ्लैट्स मैदान का उपयोग केवल खेल और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए ही किया जाएगा। व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी, ताकि स्थानीय खिलाड़ियों के हित सुरक्षित रह सकें। नैनीताल में पर्यटन सीजन के कारण हल्द्वानी होते हुए नैनीताल और आसपास के पर्यटक स्थलों की सड़कों पर दबाव बढ़ गया है। खासकर काठगोदाम से रानीबाग, भीमताल और नैनीताल रोड पर जाम की समस्या सामने आ रही है। इसे नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने 8 जून तक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है। इस योजना के तहत बरेली रोड से पर्वतीय क्षेत्र जाने वाले सभी वाहन 3 पानी फ्लाईओवर से ग्वालापार रोड होते हुए नारीमन तिराहा काट गोदाम से अपने गंतव्य तक जाएंगे। रुद्रपुर की ओर से आने वाले वाहन पंतनगर तिराहा रुद्रपुर दिनेशपुर मोड़ से NH 109 नया हाईवे लालकुआं 3 पानी फ्लाईओवर ग्वालापार रोड व नारीमन तिराहा मार्ग से निकलेंगे। रामनगर और बाजपुर से पहाड़ जाने वाले वाहन कालाढूंगी नैनीताल तिराहा से मंगोली होते हुए यात्रा करेंगे। इस दौरान भारी वाहनों का आवागमन सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा, जबकि यातायात सामान्य होने पर ढील दी जाएगी। पहाड़ से हल्द्वानी आने वाले भारी वाहनों को नंबर 1 बैंड से पीछे रोड के बाईं ओर और पुलिस चौकी सलड़ी क्षेत्र में अमृतपुर मोड़ के पास पार्क किया जाएगा। काठगोदाम क्षेत्र में 3 बजे के बाद नैनीताल और भवाली से मस्जिद तिराहा होकर मैदानी क्षेत्र जाने वाले पर्यटक वाहन नंबर 1 बैंड व रूसी बाईपास द्वितीय से डाइवर्ट होकर रूसी बाईपास प्रथम होते हुए कालाढूंगी मार्ग से जाएंगे। पहाड़ से हल्द्वानी आने वाली रोडवेज केमू बसें और टैक्सी अपने निर्धारित मार्गों से चलेंगी। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज और कटरा से श्रीनगर के बीच रेल मार्ग के लोकार्पण की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग से जुड़ा देश बना इतिहास। मुख्यमंत्री ने नैनीताल में खिलाड़ी योजना और पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस पर अमर उजाला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, देवभूमि खेल भूमि बनने की ओर अग्रसर। देहरादून में अनफिट विक्रम, सिटी बसों के खिलाफ चलेगा अभियान, हिंदुस्तान समाचार पत्र की सुर्खी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विकास के लिए नवाचार पर बल देते हुए इसे प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने कार्यालयों में आम जनता के लिए उपलब्ध रहने के निर्देश दिए। देहरादून में डेंगू और जलजनित रोगों की रोकथाम में आशा कार्यकर्त्रियों के सक्रिय भूमिका का दिख रहा है असर। राजधानी में इस वर्ष डेंगू के मामलों में कमी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जल्द ही स्पोर्ट्स लिगेसी प्लान लागू करेगी। 8 प्रमुख शहरों में तेज खेल अकादमियां की जाएंगे स्थापित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान्ह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।